कोविड-19 बहुत आसानी से फैलने वाली बीमारी है, तो ऐसे में एक मुद्दा जो सबसे अहम हो जाता है वो ये है कि जहां अस्पतालों में कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है वहां किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट से संक्रमण ना फैले। इन हालात में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्या अहमियत है?
हॉस्पिटल्स में तो बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल्स वो सब ऑलरेडी है, तो उस मामले में खूब ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन जहाँ पे नया क्वारंटाइन जगह चुना गया था, जैसे कि किसी कुछ गवर्नमेंट को होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर्स माना गया था कुछ स्टेट्स में, उस जगह पे कोई एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स नहीं रहते हैं, तो वहां पे वो प्रोटोकॉल इमिडिएटली बनाना पड़ेगा। और जो भी ये कोविड रिलेटेड वेस्ट जनरेट होती है तो उसको सही ढंग से कलेक्ट करके कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी तक पहुंचाना पड़ेगा। ये जो कनेक्शंस आए जो इमीडिएटली जो नया क्वारंटाइन सेंटर से कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी तक, वो सब करने का अर्बन लोकल बॉडीज का जिम्मेदारी है। घर में कुछ लोगों के लिए सेल्फ आइसोलेशन लेना पड़ता है, तो वहां पे गाइडलाइंस CPCB का गाइडलाइंस ये कहता है कि जो भी मास्क यूज करते हैं, जो भी कोविड रिलेटेड कॉन्टैक्ट में आते हैं, इन्फेक्शियस पर्सन से कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो सारे चीज सीजर्स करना पड़ता है, छोटा सा पीसेस में काट के एक पेपर के लिफाफे में रखना पड़ता है 72 आवर्स। उसके बाद में उसको कूड़े का उसमें डस्टबिन में डाला जा सकता है, तब उसको जनरल वेस्ट माना जाता है। लेकिन तुरंत उसको जो भी घर में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है तो उसमें मिक्स नहीं करना चाहिए। ये एक गाइडलाइन दिया गया है, उससे जो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को घर में आकर कलेक्ट करते हैं उनको वो इन्फेक्शन पास नहीं होगा।
तो आपने मेडिकल गाइडलाइंस की बात की वेस्ट डिस्पोजल के लिए, तो भारत में मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने के लिए किस तरह की गाइडलाइंस है, और क्या इन हालात में कोविड-19 के हालात में कोई नई गाइडलाइंस सामने आई है?
वैसे तो भारत में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998 से है, तो मतलब 20 साल से ऊपर का हमारा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन ये 2016 में ये नया बायोमेडिकल रूल्स बनाए गए थे और 2018 में फिर से उसको एमेंड किया गया है, तो काफी एक्सपीरियंस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया में है। लेकिन ये जो कोविड आया हुआ है ये ज्यादा इन्फेक्शियस वेस्ट है। पहले भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स में मान लीजिए करीब हमें 560 टन पर डे का बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करता था 2019 में की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, लेकिन आज कोविड की वजह से जब 559 टन पर डे है तो उसमें देखा जाए तो 10% इन्फेक्शियस वेस्ट रहता था और ज्यादा 85% जो है वो ना हजार्डस मटेरियल है ना इन्फेक्शियस मटेरियल है, ओनली 5% हजार्डस वेस्ट होता था। अभी क्या हो रहा है, ये परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट ये बढ़ गया है। CPCB ने पहले एक गाइडलाइंस ले आया है, उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपना कंसर्न रेज किया था कि भाई ये डोमेस्टिक वेस्ट में ये कोविड का वेस्ट जा नहीं रहा है, वो कैसे हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो इतने सारे कोविड रिलेटेड वेस्ट बनते जा रहा है तो ये बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा चेन इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है, प्रॉपरली डिस्पोज कर रहा है। ये उन्होंने एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूछा गया था कि मेक श्योर दैट गाइडलाइंस और कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस बनाए हर चीज को ध्यान में रख के, और वो ये भी देखा कि इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवनेस को भी मॉनिटर करने की जरूरत है। इसीलिए CPCB ने सेकेंड टाइम्स ओनली कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस दोबारा ले आया गया।
तो जब मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करते हैं, चाहे वो इंसिनरेटर्स में हो या इंट्रेंचेस में हो या किसी और तरीके से, तो उस वक्त किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं कि स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर ना पड़े, खासतौर पर चाहे ग्लव्स हो या सिरिंजेस जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो सकती हैं?
इसमें एक चैलेंज ये है, जहां जहां पे ह्यूमन एक्सपोजर होगा, चाहे वो घर में जो कूड़ा बन रही है उससे क्या एक्सपोजर हो सकता है, वहां से आपका रैग पिकर ने उसको उठा करके कलेक्ट करके कलेक्शन बिन में दिया, वहां से बायोमेडिकल वाले वहां से उठा करके आपका बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी तक ले गए थे, तो पूरे ये जो कलेक्शन नेटवर्क है उसमें जो भी इन्वॉल्व वर्कर्स हैं उसको एक्सपोज होने का संभावना है, उसको कम करने के लिए उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को सही ढंग से यूज करना पड़ेगा, और उसका ऑलरेडी कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस से पहले ही उसको इम्यून करना पड़ता है, वो टीका वगैरह लगाना होता है, वो सारा चीज सही ढंग से सब लोगों को दिया गया कि नहीं। और जितना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट ओनली मास्क लगाना और गम बूट्स लगाना, नहीं है वो तो पूरा एप्रॉन, उनका अलग से स्पेसिफिकेशन है, वो सब लेना पड़ेगा। एक तो ये चीज है कि एक्सपोजर एक बड़ा समस्या है, जो वर्कर्स हैं उनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसको अवेयरनेस देना चाहिए, और उसको ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी रेगुलरली देना चाहिए, तभी ये स्प्रेड को कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये तो प्रॉपरली सेग्रीगेट कर रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, डबल लेयर में उसको पैक कर रहे हैं, तुरंत उसको इंसिनरेशन फैसिलिटी तक ले जा रहे हैं, वो एक सेकेंड चैलेंज है। और तीसरा ये है कि इंसिनरेशन और कॉमन बर्निंग में बहुत फर्क है। हम लोग यहाँ पे दो चैम्बर का एक फैसिलिटी रहता है, उसमें पहले में 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको जलाना होता है, वहां से जो भी गैसेस होते हैं निकलते हैं वो सेकेंड चैम्बर में आते हैं। सेकेंड चैम्बर में आपको 1050 ± 50 डिग्रीज, मतलब करीब 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको बंद करना पड़ता है 2 सेकेंड के लिए, तभी इसमें से जो भी निकलेगा वो सारे सारे एलिमेंटल फॉर्म में हो जाएगा और कोई इंफेक्शियस मटेरियल और निकलेगा नहीं, पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है।
भारत में सोडियम हाइपोक्लोराइड को कीटाणु नाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्थिति में हम देख रहे हैं कि इलाकों को संक्रमण रहित रखने के लिए जगह जगह उसका छिड़काव भी किया जा रहा है, तो क्या इसके वाकई कुछ फायदे हैं, और अगर सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया तो क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है?
हाँ हाँ, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप यदि पूरे तरीके से केमिकल यूज और कोविड रिलेटेड में देखा जाए तो हम लोग 4 जगह पे केमिकल्स को यूज करते हैं। पहले हम हैंड वॉश के लिए कहते हैं कि आप सोप सॉल्यूशन से आप तुरंत जो है 20 सेकेंड्स के लिए अपना हैंड वॉश कर लीजिए, ताकि उससे जो भी ये जो कोविड की बात कर रहे हैं, ये कोविड प्रोटीन के ऊपर 3 एनकैप्सुलेशन है, वो तुरंत सर्फ सॉल्यूशन से ब्रेक हो जाता है, तो देन इट बिकम्स इनइफेक्टिव। और एफिशिएंसी की जरूरत है, जिसमें आपको सर्टेनिटी इज वेरी हाई, तो ऐसे मामले में हम यूज करते हैं, आपको उसमें 60% अल्कोहल की बात करते हैं सैनिटाइजर में, उसमें 60% अल्कोहल की वजह से क्या एफिशिएंसी ऑफ किलिंग दिस वायरस एनहांसेस सब्सटेंशियली, वो काफी बढ़ जाता है उसकी एफिशिएंसी ऑफ किलिंग। और तीसरा है फार्मास्यूटिकल्स, ये तो हम लोग टेबलेट्स तो लेते ही हैं, वो भी एक केमिकल है। और चौथा है डिसइंफेक्टेंट्स की, और ये सैनिटाइजर में बहुत थोड़ा सा अंतर है। ये जो डिसइंफेक्टेंट, बेसिकली हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सॉल्यूशन रिकमेंड किया गया था इंडिया में बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, तो उसमें क्या होता है कि आपको परफेक्टली पूरा जो भी इंफेक्शियस मटीरियल है वो किल हो जाती है एट 1%। ये हम लोग घर में क्लीन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे हाई टच पॉइंट बोलते हैं, जैसे कि लिफ्ट में जो आप लिफ्ट खोलते वक्त बहुत हर आदमी को उसको पकड़ के खोलना पड़ता है, जहाँ पे सारे लोग वहाँ पे हाथ रखेंगे, ऐसे कोई जगह पे आपको स्प्रेड होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। ऐसे चीज को पहले हम चाहते हैं कि डिसइंफेक्टेंट से क्लीन किया जाए वेरी फ्रीक्वेंटली। लेकिन ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है, इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन नेसेंट ऑक्सीजन, इससे आपको तुरंत बैक्टीरिया किल हो जाती है, ये क्लोरीन की वजह से ये करोजन हो जाता है इफ इट इज ऑन मेटल सर्विस। जहां जहां मेटल है तो वहां पे हम लोग 70% अल्कोहल और कुछ अदर कैटियोनिक ये भी सर्फेक्टेंट्स को यूज करना पड़ता है, तो ऐसे हम लोग उसको फ्रिक्वेंटली क्लीन करना पड़ेगा। दूसरी सवाल ये है कि ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये क्या फ्रीक्वेंटली यूज करने की जरूरत है, जैसे भी यूज करना चाहिए? अब अभी क्या हो रहा है, जहां पे कंटेनमेंट एरियाज है, जो रेड जोन के अंदर में जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पे कोविड केसेस ऑलरेडी है एंड एक्सपोजर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ऐसे सिचुएशन में बहुत छोटी जगह पे वहां पे कहीं पे भी ये कोविड किसी भी सरफेस में जी सकता है और स्प्रेड हो सकता है. ऐसे सिचुएशंस में ये डिसइंफेक्टेंट 1% सॉल्यूशन स्प्रेइंग इज ऑलवेज एडवाइज्ड, इसीलिए यूज करते हैं. लेकिन इसका भी बहुत सारे केयरफुली यूज करना पड़ेगा. कुछ ऐसे लोग हैं जो ये जो 1% है, जो ये जो बेसिकली इट इज ए वेरी ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है, उसको स्किन सर्फेसेस में, आईज में या नोज में ऐसे नहीं जाना चाहिए. इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज करना चाहिए जब हम 1% सॉल्यूशन बनाते हैं, और उसके बनाने के बाद जब हम स्प्रे करते हैं तब भी हमें ये सब लेना पड़ता है. कुछ ऐसे लोग हैं जो इनडिस्क्रिमिनेटली इसको यूज करते हैं, मतलब ये है तो कहीं पे भी इससे वॉश करने से तो निकल जाएगा. ऐसे यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं. मतलब जहाँ पे आपको कोविड वायरस सर्वे करने का सर्वेसेस नहीं है, वहां पे भी यदि आप ये डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे, वहां पे जो भी जर्म्स होंगे वो भी सब मर जाएंगे, तो उसमें आपका बायोडाइवर्सिटी का काफी लॉस होता है. इसलिए इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ दिस ये डिसइंफेक्टेंट या जो भी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, तो उसको हम रिकमेंड नहीं करते. लेकिन जहां जरूरत है वहां जरूर यूज करना चाहिए, और इससे उसको कंप्लीट किलिंग हो जाएगा और आपका सैनिटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा.
भारत में यूएनडीपी सरकार के साथ मिलकर किस तरह के कदम उठा रहा है कि केमिकल वेस्ट हो या बायोमेडिकल वेस्ट हो, उसका सही तरह से निस्तारण हो सके और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर ना पड़े, खासतौर पर इस वक्त COVID-19 जब फैला हुआ है इस वक्त?
यूएन ऑर्गेनाइजेशन सारे मिलकर के एक रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बना रहा है, उसमें बहुत सारे चीजों को वो लोग ध्यान में रखा है. पर्टिकुलरली इसको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में भी ये चीज मेंशन किया गया कि वो दैट इज आल्सो वन ऑफ दी एरिया है जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मदद करना चाह रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं. अभी हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO, UNDP, UNEP, UNIDO, ये सब साथ में मिल करके किस टाइप का, कहाँ कहाँ इंडिया में अवेयरनेस की जरूरत है, कहाँ पे नॉलेज की जरूरत है, किस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफर्ट्स को मदद और दे सकते हैं, ये चीज भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. बहुत जल्दी एक प्रोग्राम बाहर करेंगे और जो भी जरूरत है हम यूएन के